सम्माननीय मधुरवाणी ग्रुप के जिनका मुख्य रोल रहता है उसमें, ऐसे मधुर आवाज वाले आदरणीय सतीश भाई जी का मधुर मधुर तालियों से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे जैसे स्मृति होती है वैसे सामर्थ्य आ जाती है, और सामर्थ्य के आधार से वैसे ही फिर निर्णय होते हैं और कर्म हो जाते हैं। आजकल के पुरुषार्थ में इस बात की बहुत आवश्यकता है, स्मृति के आधार से सामर्थ्य और सामर्थ्य के आधार से कर्म। बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं आदरणीय सतीश भाई जी, जैसे स्मृति वैसे सामर्थ्य और उसी के आधार से कर्म और भाग्य कैसे बनता है। आदरणीय सतीश भाई जी को कौन नहीं जानता। बाबा के अवतरण के बाद सतीश भाई जी के साथ सारा ग्रुप जब गीत गाता है, मधुरवाणी ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें मुख्य भूमिका आदरणीय सतीश भाई जी के है। सतीश भाई जी का परिचय ज्ञान में पिछले 55 साल से है, 35 साल से समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं। विशेष ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा आपकी है। 8 साल बाबा के रथ अर्थात गुलजार दादी जी तथा निर्वेर भाई जी का भोजन बनाने की सेवा आपको सौभाग्य से प्राप्त हुई है। पिछले 20 साल से आर्ट एंड कल्चर विंग के हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। 15 वर्ष से विदेशियों को हिंदी पढ़ाने की सेवा आप दे रहे हैं, और अव्यक्त बाप दादा ने आपको विशेष संतुष्टता का वरदान दिया है। और विदेशी भी आपको कहते हैं सतीश भाई अर्थात सेटिस्फाई भाई, माना संतुष्ट भाई। आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, इसलिए विदेशी भाई बहनों ने आपको अमृत वेला ब्रदर का टाइटल दिया है। ज्ञान के प्रारंभिक दिनों से ही चार्ट लिखते हैं, और चार्ट भी बहुत अच्छा होता है। हर प्रकार के चार्ट में उनका अव्वल नंबर होता है। 6000 से भी अधिक गीतों का निर्माण आपके द्वारा हुआ है। बाबा के अनेकानेक वरदान आपको प्राप्त है। वैसे दिव्य बुद्धि का अर्थात गीत लिखने का, प्रसंग अनुरूप गीत लिखने का वरदान, ये विशेष वरदान है। जो भी हम गीत सुनते हैं, ज्यादातर 90% रचना केवल और केवल सतीश भाई जी के द्वारा है। मुरली के गीत आदि से 600 से अधिक गीत बॉलीवुड के सिंगर्स ने गाए हैं। जो भी प्रसिद्ध गायक है उन्होंने सतीश भाई जी के लिखे हुए गीत गाए हैं। टेलीविजन और अनेक शो में सतीश भाई जी दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से बाबा के यज्ञ में योगी पवित्र जीवन कलाकार के रूप से बिता रहे हैं। आपका जीवन यज्ञ में सफल हुआ एक कलाकार के रूप में, साथ साथ ब्रह्मा भोजन बनाने के विशेषता के आधार से, और होता रहेगा, और अनेक आत्माएं आपसे प्रेरणा लेती रहेगी। हम भी आपका दिल से बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं आपको, और आदरणीय सतीश भाई जी को नम्र निवेदन करते हैं कि आप स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप इस विषय से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सबने कहा ओम शांति। भाग्यवान हम कितने हैं, भाग्यवान हम कितने हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे, अगम अगोचर कहते जिसे, उसे सामने पाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। किसी जन्म के भले कर्म थे, ध्यान दीजिएगा, किसी जन्म के भले कर्म थे, पुण्य का फल है पाए। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमको अपनाए। परम पिता वो परम धाम से धरा पे आते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अपरंपार प्रभु है हमको अपना पार बताए, अपरंपार प्रभु है हमको अपना पार बताए। वेद ग्रंथ सारे ग्रंथों का, वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का हमको सार सुनाए। ज्ञान के सागर मन के गागर में वो भरने आते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। सुख शांति आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, पवित्रता संतोष रतन पाके, जग गई जीवन ज्योति, अविनाशी धन दे के हमें धनवान बनाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बांची, ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बांची, देह और दुनिया भूल के सब कुछ गोप गोपियां नाची, देह दुनिया भूल के सब कुछ गोप गोपियां नाची, प्रेम छाछ पे नाच नाच के, प्रेम छाछ पे नाच नाच के हमें नचाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सबको आने वाले नए वर्ष की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं और अनंत अनंत बधाइयां। साथ ही साथ आज के इस दिन पर संसार के पवित्रतम सर्वोत्तम महानतम इस सभागार में आप सब डायमंड बाबा से मिलने की लगन लगाने वाले डायमंड बच्चों, डायमंड भाइयों और बहनों, डायमंड हॉल में डायमंड जैसे चमकने वाले दिव्य रत्नों का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज के मुरली के अनुसार मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सब खजाने देने दे करके माला माल बनाने, सिर्फ तुम ईश्वरीय मत पर चलते रहो और साथ ही ईश्वरीय मत पर चलते रहो और पक्का वर्षा लेकर के बाप से पूरा वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है। ये लगन लगाने वाले विशेष रत्नों का और ईश्वरीय मत, दैवी मत, मनुष्य मत के महान अंतर को समझने वालों का। ईश्वरीय मत से हम अभी वापस घर जाते हैं, फिर आएंगे नई दुनिया में, ऊंच पद पाएंगे। और दैवी मत बड़ी सुखदाई है जो सुखी देती है, और मनुष्य मत जिससे दुख ही मिलता है। इस महान अंतर को समझने वालों का और इस ईश्वरीय ज्ञान में रमण करने वालों का, जो बाप हमें पढ़ाने आए हैं उनमें पक्का पक्का निश्चय रखने वालों का, धारणा सार के अनुसार अपनी बीमारी को सर्जन से न छिपाने वालों का, माया के भूतों से स्वयं को बचाने वालों का, स्वयं को राज तिलक देने के लिए देकर के ऊंच पद और वर्षा लेने का अधिकारी बनाने वालों का, और अविनाशी धन से धनवान बनने वालों का, पुराने पतित विकारी आत्माओं से अब लेन देन न रखने वालों का, और बेहद के बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो बाप में, पढ़ाने वाले में पूरा पूरा निश्चय रखने वालों का। और आज के वरदान के अनुसार इस कल्याणकारी युग में सबका कल्याण करने वाले, प्रकृति जीत माया जीत बनने वालों का स्लोगन के अनुसार सबको सम्मान देते हुए माननीय बनने वालों का, अव्यक्त इशारा के अनुसार संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा हमारी संतुष्टता को समाप्त नहीं कर सकता है। इस विशेष लगन में मगन रहने वालों का और आज इस हाल में बैठकर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप कैसे बने, इस बात के लिए, सुनने के लिए, आपके आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मुरली के पॉइंट्स, बाबा के महावाक्य, उनके प्रति सम्मान, रिगार्ड, इस बात से सिद्ध होती है कि कोई भी कार्य शुरू करें तो हम पहले ज्ञान की मुरली का लेन देन कर लें, फिर आगे यात्रा करें तो हमारी यात्रा कैसे हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो सब यहां बैठे हैं, आप सब यहां बैठे हैं मन से भी, बुद्धि से भी, लगन से भी, इसके लिए सब कोई हाथ उठाए, हाथ उठाए, सब बैठे हैं, ठीक है, लंबा हाथ उठाए, लंबा हाथ, चैतन्य बैठे हैं ना, एकदम सब चैतन्य बैठे होंगे, धन्यवाद। एक बार अपने लिए अभिनंदन कर ले। आज का विषय है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। अगर इस विषय को एनालिसिस कर लें, विश्लेषण कर लें, तो एक बात में सारा ज्ञान समाया हुआ है। स्मृति, हम सब जानते हैं कि स्मृतियां, बाबा की मुरली पूरा ज्ञान स्मृति का है और ज्ञान का एसेंस ही स्मृति है। बाबा की मुरली जो श्रीमत मिलती है, बाबा का आगमन जो होता है वो स्मृति के लिए ही होता है। ये सब बाबा ने स्मृतियां दी हैं, उन स्मृतियों का ढेर सारी, बाबा आते ही हैं स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम कौन हो और मैं कौन हूं, कहां से आए हैं, क्या करना है, पूरे ज्ञान की स्मृति देते हैं बाबा, ये हम सबको पता है। दूसरा है स्मृति स्वरूप बनना। स्मृतियां बहुत मिली हैं लेकिन स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करना होगा, स्मृति वो थ्योरी है, पॉइंट याद करना, मैं आत्मा हूं ये भी कहना, मैं परम धाम से आया हूं ये भी कहना, और भगवान पढ़ाने आए हैं ये भी कहना और पढ़ना भी, ये सब स्मृति है। लेकिन ये थ्योरी है और जब स्वरूप बनते हैं माना प्रैक्टिकल मिलाते हैं, मैं आत्मा हूं कह तो दिया लेकिन जब उसका स्वरूप बनते हैं तो समझो वो हमारे प्रैक्टिकल में आना शुरू हो गया। तो स्मृति स्वरूप बने, फिर क्या होगा, उससे समर्थ स्वरूप बनेंगे। हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तमाम शक्तियां चाहिए, तमाम बल चाहिए, ज्ञान बल चाहिए, याद का बल यानी योग का बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए, सेवा का भी बल चाहिए, शांति की शक्ति भी चाहिए, दुआओं का भी बल चाहिए और इसके साथ संगठन का भी बल चाहिए। ये सब तमाम बल हैं, अष्ट शक्तियां हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बल है वो है स्मृति का बल। ये स्मृतियां हमें शक्तिशाली बना देती हैं। स्मृतियां शक्तिशाली बना देती हैं। रामायण के आख्यान में, रामचरितमानस में एक वृत्तांत आता है कि ऋषि जामवंत जो रीछ राज है, रीछ राज, तो रीछों में जो बड़े हैं, वो हनुमान जी को कहते हैं तब जब सीता की खोज की तैयारी हो रही है और सब बैठे हैं, जैसे कि सब जानते हुए भी कैसे ढूंढा जाए, कैसे 400 योजन पार करके समुद्र को लांघ करके हम कैसे जाएं श्रीलंका में, लंका में, तब देखते हैं। और रीछ राज ने तब कहा हनुमान से, का चुप साध रहा बलवाना, का चुप साध रहा बलवाना, ऐ बलवान, ऐ महान हनुमान, क्या चुप साध के बैठे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे अंदर, या तुमको तो बाल्यकाल में ही उड़ने की जो है वो शक्ति मिली है, संकल्प करो तुमको उड़ना आता है और तुम्हारे सिवाय कोई जा नहीं सकता है। तो हनुमान कहते हैं अच्छा याद आया, और देखते देखते अपने स्वरूप को याद किया और अपने स्वरूप में इमर्ज हो गए और अपने स्वरूप में आकर के उड़ने लगे। यही काम भगवान कहता है, आय हनुमानो क्यों चुप बैठे हो, तुम्हें तो उड़ने की शक्ति है, उड़ो, उड़ करके चलो, अब और नहीं बैठो। भगवान ने हम सबके उन शक्तियों को जागृत कर दिया, स्मृति दिलाई कि तुम तो फरिश्ता हो, तुम तो सृष्टि के आदि के दो युगों में तुमने तो देवी देवता बनकर 2500 वर्ष तक अखंड संपूर्ण सृष्टि पर विश्व महाराजन, विश्व महारानी और देवी देवता संपूर्ण सतो प्रधान बनकर के, प्रकृति सहित सबके मालिक बनकर के राज किया था। तुम तो संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण पावन थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कितनी स्मृतियां दी, और इन स्मृतियों से देकर के भगवान ने हमारा स्वमान जगा दिया, हमें स्मृति दे दी कि तुम क्या थे, और उन स्मृतियों को पाकर हम सब क्या हो गए, शक्तिवान बन गए। सब शक्तिवान बन गए, सब शक्तिवान बन गए हैं, स्मृति तो आ गई है ना। ये याद रखिए कि 2500 वर्ष तक, 1-2 साल नहीं, 2500 वर्ष तक हम सब संपूर्ण सृष्टि पर अखंड दैवी स्वराज्य के अधिकारी थे, हम देवी देवता थे, संपूर्ण पावन थे। इसको याद करते ही जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं कि ये होता है, वो होता है, दृष्टि जाती है, वृत्ति जाती है, सब समाप्त हो जाएगा। केवल याद रखो कि मैं कौन, मैंने 2500 वर्ष तक प्रकृति को भी पावन बन करके, और आज की मुरली के अनुसार हम सबके कल्याणकारी, कल्याणकारी युग में सबका कल्याण करने वाले हम प्रकृति पति हैं। कौन है, कौन है हम, बोलिए, प्रकृति पति, और कौन है, माया पति, माया जीत, प्रकृति जीत है। कितने महान है, ये स्मृति दी। अब क्या करना है आपको, इन स्मृतियों से बाबा ने हमको श्रृंगार किया। सबसे पहले बाबा ने स्मृति दी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, सारी दुनिया का एक ज्वलंत प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, मैं कौन, इसी प्रश्न में सारा संसार उलझा है, सारे ग्रंथों का सार ढूंढा जाए तो नहीं मिलता है। और भगवान ने आते ही हम सबको, पहुंचते ही, आते अवतरित होते ही पहला ही पाठ बता दिया, बच्चे तुम तो पवित्र आत्मा हो, तुम तो देवात्मा हो, तुम तो महान आत्मा हो, तुम मस्तक पर यहां पर विराजमान हो, तन के भव्य भाल पर विराजमान हो, मस्तक सिंहासन पर बैठे इस देह रूपी राजधानी के तुम राजा हो। तुम तो कर्मेंद्रिय जीत हो, तुम तो माया जीत हो, तुमने कल्प कल्प माया पर विजय पाई है। ऐसे श्रेष्ठ स्मृति देकर के, जब से स्मृति दी, कितना अच्छा, कितना क्लियर कि मैं आत्मा हूं। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा में ही सातों गुण है, ओरिजिनल गुण, सारे गुण आत्मा में भरे हैं, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। कितना इतना स्पष्ट ज्ञान संसार के किसी भी ग्रंथ में ये है नहीं। अपने परम आदरणीय जगदीश भाई, जब संत सम्मेलन हो रहा था ओम शांति भवन में, सारे संत बैठे थे, बहुत बड़ी स्टेज मंच बनाई गई, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जब मैं इस ईश्वरीय ज्ञान में आया तो मैंने तमाम वेद ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, मीमांसाएं, दर्शन, उपनिषद सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन यहां पहुंचते ही जब बहनों ने बताया कि तुम आत्मा हो, पहला ही पाठ बताया और ये बताया कि यहां वहां नहीं, कि यहां हो, कि वहां हो, कि यहां हो, सीधा बताया मस्तक पर हो, और सीधा बताया मन बुद्धि संस्कार है, सीधा बताया 84 जन्म ही लेती है आत्मा, सीधा बताया कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इतना ज्ञान, मैं सोचा कि इतना क्लियर तो एक बार में बताया ही नहीं गया, हालांकि सुना सब जगह, अलग अलग जगह पर, अलग अलग ग्रंथों में, लेकिन कहीं पर भी एक मत नहीं मिला। और इनके पास जैसे डंके की चोट पर, जैसे इनको पक्का किया गया, जिससे सुनो वही ये बोलता है कि तुम तो आत्मा हो, तुम तो आत्मा हो, ये ज्ञान इनको देने वाला कौन है। और उसी समय मैंने सोचा अगर इन बहनों से पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगी, लेकिन मेरी स्मृति ये जागी और मैंने समझा, मुझे निश्चय हो गया ये भगवान के ज्ञान के अलावा किसी का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। बाबा ने आते ही संसार के सबसे बड़े प्रश्न कि मैं कौन, इसको देकर के हम सबको जागृत कर दिया, हमारा स्वमान जगा दिया कि मैं कौन हूं, अपनी पहचान बता करके सारे मन की भटकन को ही समाप्त कर दिया, युगों युगों के क्वेश्चन समाप्त हो गए। और यही दूसरा ज्ञान, जब बाबा ने अपना परिचय दे दिया, भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहा है, मैं कौन, दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने ग्रंथ हैं, एक न मिले दूसरे, सबका अपना अपना है, लेकिन बाबा का ज्ञान मिलते ही सारे धर्मों का, सारे ग्रंथों का, सबका ज्ञान पता लग जाता है। किसी का बिना दोष दिए हम सब जानते हैं कि समय समय पर सबको आना था, अपने अपना काम किया, उस समय पर उनकी आवश्यकता थी, और आज अब परमात्मा स्वयं अपनी पहचान दे करके हम सबको, सब धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम ज्यादा सोचो नहीं, ऐसे कह करके सुना करके, अपने अपनी बात बता करके, मैं कौन हूं परिचय दे करके, सारे मन के भटकन, सारे तूफान, सारे संशय, जितने भी संशय थे, सारी दुविधाएं मिटा दी। अब हम में से किसी को यह नहीं है कि भगवान को ढूंढने के लिए इनके पास जाऊं वा उनके पास जाऊं, इस संप्रदाय में जाऊं वहां जाऊं, इस धर्म को मानूं उनको धर्म मानूं, यहां तीर्थ यात्रा करने जाऊं कहां जाऊं। हो गया ना लाइन क्लियर, सबको मिल गया, बाबा भगवान मिला है, भगवान मिला है तो लंबा हाथ उठाए, सब कोई लंबा हाथ उठाए, भगवान मिला है, कोई भगवान भाई तो नहीं मिल गए, भगवान मिला है ना सबको, सबको भगवान मिला है, एक बार अभिनंदन कीजिए अपने इस श्रेष्ठ भाग्य के लिए, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी बात है भगवान का मिलना। किसी जन्म के भले कर्म थे, पुण्य का फल है पाए, और दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमको अपनाए, हम सब धन्य धन्य हो गए। फिर स्मृति आई, अपनी स्मृति आई, स्मृति आई बाबा की, बाबा ने अपना परिचय दिया, हम सबको याद है। और जब बाबा कहते हैं कि बच्चे किसके साथ मिल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, कौन तुम्हारे सामने साकार में बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते थे। चलते चलते खेलते थे, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो, बच्चे कौन सामने, घड़ी घड़ी याद दिलाते थे बाबा, ताकि देह में किसी देह में किसी की बुद्धि न अटके। एक बहुत बड़ा ये संकल्प था कि जिसको इतना बराबर याद रहे कि शिव बाबा आया है, और शिव बाबा आकर के कहे किसके साथ खेल रहे हो, कौन तुम्हारे साथ है, इसमें बुद्धि न जाए उसमें जाए, इसके लिए कितनी पावर चाहिए, कितनी स्मृति चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा और ममा ये दोनों आदि रत्न, जो प्रथम रत्न रहे, आदि रचना भगवान की, ये इनको स्मृति आ गई, बाबा को स्मृति दिला दी कि तुम जगत पिता हो, तुम प्रजा पिता हो, तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, तुम इस सारे जगत के पितामह हो। ये ज्ञान मिलते ही बाबा देखते देखते उनके चाल में, उनके बोल में, उनके हाव भाव में, उनके कर्मों में स्मृति आई, और बाबा देखते देखते दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बन गए, सृष्टि के आदि पिता बन गए, हम सबके लिए आदर्श बन गए, शिव बाबा को देखते देखते शिव बाबा के समान बन गए, आदम और खुदा में अंतर ही मिट गया। दोनों ने अपने आप को बाबा से जोड़ करके बाबा बाप समान बन गए। ये स्मृति का बल था। ममा आई और ममा को स्मृति मिल गई कि ममा, बाबा ने कहना शुरू किया ममा, तो सारे लोग ममा कहने लगे, और देखते देखते जो पुरानी पुराने बहनें थीं, हमारी दादियां जो ममा से भी पहले आई, उन्होंने सहर स्वीकार कर लिया कि ममा ममा है, ममा के चाल में, ममा के भाव में, ममा के दिनचर्या में, ममा के उठने बैठने में, सारा संसार जो भी भाई बहने आते थे बाबा और ममा की गोद में सीधा माँ माँ ऐसे करके गोद में चले जाते थे, और भूल भी जाते थे, कहीं अंतर ध्यान हो जाते थे, किसी अव्यक्त लोक की यात्रा करते थे। ये क्या चमत्कार रहा, ये स्मृति का चमत्कार रहा। और आपको भी, हम सबको भी केवल इतनी स्मृति रखनी है कि हमारा संपूर्ण रूप वतन में है। आप यहां बैठे हैं लेकिन आपका संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है, जैसे बाबा और मम्मा का रहा वैसे हम बच्चों का भी है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब कभी पुरुषार्थ करें तो ऐसे देखें और सामने दर्पण की तरह अपना संपूर्ण रूप ऐसे करें, वरदानी रूप करें, सब कोई वरदानी रूप करें, ऐसे स्मृति में बैठें वरदानी मुद्रा में, और देखें कि मैं संपूर्ण रूप में, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं संपूर्ण आत्मा हूं। मैं शिव शक्ति हूं, मैं संपन्न संपूर्ण संपूर्ण पावन हूं, शिखर। ये स्मृति आपको बीच बीच में करते रहना है, सामने उसको रख करके देखें कि मेरी संपूर्णता में क्या कमी रह गई। बाबा ने साकार में रहते हुए 6 मास पूर्व बाबा ने बुलाया कैलाश बहन को, जो गांधीनगर में रहती है, पहाड़ी कहा करते थे लोग, उसको बुला करके उसको भेजा वतन में कि बच्ची आओ बैठो, जाओ वतन में देख करके आओ वहां बाबा कैसा है। जब आई वापस तो पूछा तो कहने लगे बाबा वहां तो बाबा बड़ा चमकीला, बड़ा चमकदार, वहां बाबा कैसा बैठा हुआ है। तो कहा मैं वैसे नहीं हूं, तो सीधा सा बाल सुलभ बोल दिया, नहीं बाबा तो लच्छू दादी बगल बैठती थी, चुप, ऐसे थोड़े बोलना चाहिए। कहा नहीं नहीं, उसको बोलने दो, बोलने दो, ठीक बोल रही। तो बच्ची और कैसा रहा, बताती रही। फिर बाबा को लग गई धुन, अब मुझे संपूर्ण बन के रहना है। और देखते ही देखते बाबा संपूर्ण बन गए। फिर बच्ची को बुलाया 6 मास के बाद, और फिर कहा बच्ची तू जाओ, फिर जाओ। फिर आके बताती है कि बाबा ये तो चमत्कार हो गया। कहा क्या हुआ बच्ची? बाबा आप यहां, बाबा आप वहां, जिधर देख रही हूं बाबा आप ही दिखाई पड़ रहे। ये बाबा के पुरुषार्थ का ये परिणाम था, रिजल्ट था। स्मृति में बहुत बड़ा बल है, अपने स्मृति को जगाने की आवश्यकता है। तमाम स्मृतियां हैं। अव्यक्त बाप दादा आए, माताओं का ग्रुप था, पूछने लगी तुमको कौन मिला है? तो सबने बताया बाबा मिल गए, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। बोला और क्या मिला है? एक सोमान दिया बाबा ने उस समय। कहा तुम्हें मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मुझे मिल गए हो, तुम मुझे मिल गए हो, तुम बच्चे मुझे मिल गए हो, तुम भगवान को मिले। भगवान तो तुम्हें मिला ही, लेकिन इतना नहीं, भगवान को भी तुम बच्चे मिल गए हो। तुम्हारे बिना ये कार्य होने वाला नहीं था। कितना श्रेष्ठ सम्मान देकर के बाबा ने हम सबका हौसला बढ़ा दिया। बाबा की पॉइंट्स वही चीजें हैं। मुरली सुन रहे हैं तो हमको लगता है कॉमन सी बातें लगती हैं, लेकिन उसी में से एक पॉइंट्स निकलती है जो आपको अच्छी लगती है। आज की मुरली में मैंने नोट किया 10-12 जगह पर बाबा ने स्मृति दिलाई है। जब बाबा की मुरली चलती है तो मुरली में बाबा स्मृति दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? बच्चे याद आया, स्मृति आई, बच्चे समझा, बुद्धि में आई बात, बुद्धि से बैठ रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि बाबा हमें स्मृति दिला रहे। इन स्मृतियों से अपने आप को, अपनी दिनचर्या को सजाना है, श्रृंगार करना है। अब आइए आपको प्रैक्टिकल इसको रूप कैसे दें, स्मृति उसके स्वरूप बन जाए और वो स्मृतियां हमको समर्थ बना दें। कदम कदम पर जो भी स्मृतियां हैं वो हमारे जीवन में आ जाए। क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए सुबह से शाम की दिनचर्या को नोट कर लें, नोट कर लें कर्मों की। मैं अपने चार्ट में बराबर लिखता रहा शुरू के दिनों में। एक तो अवर्ली चार्ट लिखता रहा, रात को 12 से 1, 1 से 2, ऐसे करके 11 से 12 चार्ट लिखता था, और उसमें इस घंटे के बीच में मेरी याद की यात्रा कितनी हुई वो नोट करता था। पूरा जो चार्ट हो जाता था नोट करता था। फिर उसको मैंने कर्म के हिसाब से भी दिनचर्या बनाई। प्रातः उठते ही, फिर याद में जाते हुए, फिर संगठित रूप से जब योग कर रहे हैं तो अमृत वेला योग कर रहा हूं तो उसमें उसमें बाबा की कितनी याद आई। फिर स्नान वगैरह करते हुए कितना याद आया बाबा। फिर मुरली सुनते हुए कितना याद किया। यानी बीच का कोई चीज छूटे नहीं। मोटे मोटे कर्म लिख करके, नाश्ता करते, भोजन करते, क्या क्या मैंने याद किया उस समय, मेरी याद की यात्रा कैसे रही, उसको नोट कर लिया। फिर ऐसे कर्म का जब लिखा और उसमें लिखा कि कर्म करते हुए कितना याद रहा, देखा दोनों का मिलान किया तो बिल्कुल बराबर आ गया। इससे ये होता है कि कर्मों का चार्ट बना ले। अमृत वेले उठते, उठते ही संकल्प, जैसे चित्र से चरित्र बनता है घर में, ऐसे बाबा का सामने उठते ही पहली दृष्टि, पहली नजर पड़े सामने बाबा के ऊपर, और ये जागरण होते ही पहली दृष्टि में पड़े बाड़ा, वाह कौन सामने है, मेरा बाबा, संपूर्ण सृष्टि के मालिक, त्रिकालदर्शी, स्वयं गुणों का भंडारी, स्वयं कालपति, स्वयं महाकाल, स्वयं मेरा परम पिता, मेरा प्राणनाथ, मेरा परम प्रिय, मेरे बाबा, मेरा सब संबंधी, कौन है मेरे साथ, प्यार का सागर, आनंद का सागर जो मेरा अपना है। ओ बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। ऐसे करके उठते ही पहली दृष्टि आज के बाद किसी देहधारी के ऊपर न पड़े, क्योंकि इन आंखों से अभी तक हमने देहधारियों को देखा, अब इन आंखों से मुझे केवल और केवल अपने बाबा को उठते ही देखना है। जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर, और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। उठते ही अपने समान को जगाएं, सामने देखें और बाबा को नमस्ते करें, इतने प्रेम पूर्ण अभिवादन करें कि आपके मन में नशा हो जाए, वाह किससे नमस्ते हो रहा है। नमस्ते आप सब करते हैं नो डाउट, लेकिन जैसा करते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। कुछ नींद में कर लिया, कुछ पता नहीं लगा कि मैंने किया भी कि नहीं किया, किसको कर रहा हूं ये भी पता नहीं लगता है, बाद में ये भी नहीं पता लगता है कि मैंने किया भी कि नहीं किया। ऐसा नहीं, जब तक पूरे होश में ना आ जाएं, पूरा जागृत ना हो जाएं, तब तक बाबा को प्रेम से नमस्ते करें। और ऐसा लगना चाहिए कि मैं बाबा को नमस्ते करूं, बाबा नमस्ते, तो बाबा सामने से बिंदु रूप से भी ऐसा लगना चाहिए कि बाबा नमस्ते कर रहा है, बाबा नमस्ते कर रहा है। सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते 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 नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा, ओ प्यारे बाबा। आपके आवाज में दमे नहीं, कुछ और कर रहे हैं क्या? ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा। अभी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस समय सवेरे उठते ही अपने आप को पूरे होश के साथ, जागरण के साथ, जो आपका शुरुआत का 10 मिनट है उसको इतना शक्तिशाली बना लें, वो आपकी दिनचर्या का आधार बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये अनुभव करें कि बाबा ने मीठे मेरे लाडले बच्चे कहकर के जगाया, और मैं वतन में रात को सो गया था बाबा के पास, और बाबा ने जगा करके मुझे तिलक दिया, मुझे ताज दे दिया, और अपने तख्त पर बिठा के खूब प्यार किया, खूब नमस्ते किया, खूब प्यार दुलार दिया, और दुलार करके पीठ ठोंकी और कहा, बच्चे आज मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर तुमको जाना है, तुम मेरे साथी हो। और तब आपकी दिनचर्या की शुरुआत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इस समान के साथ आप चारपाई से उतरे कि मैं पवित्रता की अवतार हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, आज मेरा वतन से अवतरण हो रहा है, आज मेरा वतन से अवतरण हो रहा है, मैं शिव शक्ति हूं। बोलिए, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं अवतार हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस दूसरी बात से अपने श्रेष्ठ समान के साथ आपको बिस्तर से, चारपाई से उतरना है। और कोई कोई चारपाई पर न सोते हो तो भी कोई बात नहीं, आपका धरती पर अवतार होना चाहिए। और उतरते ही क्या करना है? उतरते ही इस स्वरूप में ऐसा करें, फिर करें एक बार और करें जो मैंने पहले बताया कि मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। ये बहान होना चाहिए कि मेरा अवतरण हुआ है, रोज आपको ऊपर से नीचे आना है। अभी तक आप नीचे से ऊपर गए, कितना देर तक गए और पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कितना देर तक पहुंचे? कितने दिन से पहुंचने कोशिश में? नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना भी जाएंगे नीचे ही आएंगे, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अनाशक्त हो जाऊं, उपराम हो जाऊं, नष्टो मोहा हो जाऊं, घर को याद करूं, फिर मेहनत करना पड़ता है। अब आज से आपका रोज ही नया अवतार होना चाहिए। नीचे से ऊपर मत जाएं, रोज ऊपर से नीचे आएं, रोज ऊपर से नीचे आएं। और देखिए, जब आपका इस संकल्प होगा कि मेरा अवतार हुआ है और मैं इस साधारण से रूपरेखा में अपने पिता के, अपनी माता के, अपनी बच्ची के, इस ऊपर से मुखौटा मैंने पहना है, लेकिन इसके अंदर मैं फरिश्ता हूं, इन आंखों से देखें कि ऊपर से बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी हैं, पापा हैं, और अंदर से देखें इनको तो पता नहीं है कि मम्मी मम्मी हो गई है, पापा का पता ही नहीं, लेकिन अंदर से देखें कि मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो आया हूं इनको पंख लगाने के लिए, सबको उपराम बनाने के लिए, सबको लेकर वापस चलना है। ये श्रेष्ठ संकल्प, इस संकल्प के साथ रोज फरिश्ता बनकर के आएं और उसी दृष्टि सबको देखें, अपना कार्य करें भगवान का के आसन पे, हर एक कर्म को करते हुए यही याद रहे कि मैं भगवान के कार्य के लिए आया हूं, अपने कार्य के लिए नहीं, क्योंकि मेरा तो पूरा खाता खत्म हो गया, कली एक नया जीवन मिला, नया जन्म मिला, नया शरीर मिला, नए वेशभूषा में मैं, नए रूप में मेरा अवतार हुआ है और मुझे तो वापस जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाना है, इनको तैयार करके जाना है ताकि मैं बाबा को बताऊं कि बाबा आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा वो मैं काम करके आया हूं। उसके साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो करेंगे ना ये, ठीक है, रोज आपका अवतार होना चाहिए। सभी अवतरित हुई आत्माओं को, सभी अवतरित हुई आत्माओं को इस स्मृति को पक्का करना है कि मेरा अवतार है, मेरा अवतार हुआ है। तीसरी बात, तीसरा याद कर लें, जब आप अमृत वेला याद में बैठते हैं तब स्मृति स्वरूप क्या रहे कि बाबा मेरा साथी है, वो मेरा साथी है। और साथ साथ आपको पॉइंट बता देता हूं, पूरी दिनचर्या को लगभग 6 बातों में नोट कर लें। सुबह उठते ही 3 घंटा मुरली से पहले का, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, इस स्वरूप में टिक करके पूरा 3 घंटा बिताए। फिर जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं विद्यार्थी बनकर के, तब नोट कर लें, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं। फिर अगला 3 घंटा मैं ईश्वरीय यात्री हूं। अब यहां से की यात्रा शुरू हो रही है, आपकी दिनचर्या की यात्रा शुरू हो रही है, मैं ईश्वरीय यात्री हूं। फिर याद 3 घंटा हो, मैं ईश्वरीय संदेशी हूं, ईश्वर का संदेश पैगाम देने के लिए मैं पैगंबर हूं, मैं ईश्वरीय संदेशी हूं, सबको संदेश देना है। फिर 3 घंटा आगे का हो कि मैं अब ईश्वर का साथी हूं, मैं ईश्वर का साथी हूं, दादी जानकी का गॉड्स कंपेनियन, मैं ईश्वर का साथी हूं। किताब पढ़ी है सबने, कितनी अच्छी किताब है, भगवान हमारा साथी है, ईश्वर अपने साथ है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। कितने ढेर सारे अच्छे अच्छे गीत हैं जो साथ का अनुभव कराते हैं। तो हमेशा ये याद रहे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ईश्वर का साथी हूं। बोलिए, मैं ईश्वर का साथी हूं। आपके अंदर लगता है साथ होता ही नहीं, आवाज भी नहीं आ रही, सब जाग रहे हैं ना, जब जाग रहे हैं, हाँ जागरण में है, तो बताइए मैं ईश्वर का साथी हूं। हाँ अब आवाज आई, सचमुच आप बैठे हैं, बधाई एक बार आपको, ये सारी तो मैं ईश्वर का साथी हूं, इस श्रेष्ठ संकल्प से अपनी दिनचर्या का इस तरह से समापन करना है। और फिर रिटर्न जर्नी में मैं वापस परमात्मा के पास, ईश्वर के पास, ईश्वर के पास, ईश्वर का समीप साथी हूं, पहुंच जाओ बाबा के पास। ऐसे मोटे मोटे तौर पे तीन तीन घंटे के लिए कर ले दिनचर्या में, तो ये भी आपको बहुत मदद करती रहेंगी। आपको स्मृति स्वरूप बनने के लिए संकल्प दे रहे हैं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं, मैं ईश्वरीय यात्री हूं, मैं ईश्वरीय संदेशी हूं, मैं ईश्वर का साथी हूं। इस तरह के संकल्प करके अपनी दिनचर्या को शक्तिशाली बनाएं। और स्मृति के लिए जब याद में बैठते हैं, तो आप सब बैठते हैं अमृत वेला, कौन कौन अमृत वेला करते हैं, कौन कौन करते हैं अमृत वेला? बहुत अच्छा, यहां से तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो नहीं हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। रेगुलर जो करते हैं आप में से हाथ नीचे करें। जो कभी भी मिस नहीं करते हैं, ऐसे भी कोई है जो अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं? अरे वाह, मैं तो समझा मैं ही हूं, आप भी मेरे साथ हैं। एक बार अभिनंदन करें इन सबका, बहुत बहुत बधाइयां, बधाइयां, बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं होते हैं, आज क्लास से संकल्प लीजिए, कुछ भी हो जाए, शेष बचे हुए संगम युग में मालूम नहीं कितना बचा हुआ है, अपना तो पता नहीं है शाम तक रहे या न रहे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही चले जाइए, अभी बाबा मिलन के लिए आए हैं आप, तो उसके लिए अपने को तैयार करना है। और इस निश्चय के साथ आपको दिनचर्या में लेना है कि मैं भगवान का साथी हूं, भगवान मेरा साथी है, ये बात पक्का कर लें। और इसके साथ ये रहे कि जब याद में बैठें, तो आज से संकल्प करें कि कोई भी मैं अब से अमृत वेला मिस नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान से मिलने का स्पेशल अपॉइंटमेंट जो भगवान ने स्वयं दिया है, वरदान दिए हैं, शक्तिशाली बनाए हैं। तो हम सब शक्तिशाली बनने के लिए अमृत वेला 4 से 4:45 बजे तक का जो ऑफिशियल समय है सारी दुनिया में, जो ईश्वरी अपनी दिनचर्या है, मधुबन की दिनचर्या है, उसमें कम से कम 4 से 4:45 बजे तक का समय, जब सामूहिक रूप से सबका सहयोग मिल रहा है, सारे विश्व को, इंटायर वर्ल्ड को, हम सब जब सकास दे रहे हैं, भले टाइम अलग अलग है लेकिन एक निश्चित समय है, इस समय पर सभी भाई बहने बैठते हैं, इस समय सबका सहयोग भी मिल रहा है, तो आपको 4 से 4:45 बजे तक का समय मिस नहीं करना है। केवल इतना ठान लें तो ताली बजाएं। आप जान रहे हैं समय समाप्त हो गया है, आप जान रहे हैं कि सूचना मिल रही है विश्व के परिवर्तन की, आप ये भी जान रहे हैं कि अब पुरुषार्थ के जो भी दिन थे वो भी लगभग समाप्त होने वाले हैं। अब आपको केवल स्मृति में नहीं रहना है, स्मृति स्वरूप बनना है, और स्मृति स्वरूप बनकर के शक्तिशाली बनना है। जब तक आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे, तब तक दूसरों को समर्थ नहीं बना सकेंगे, और जब तक औरों को समर्थ नहीं बना सकेंगे, तब तक राजा नहीं बनेंगे। आप सतयुग में जाके करेंगे क्या? क्योंकि यहां पर से ही चारों युगों की रचना हो रही है। सतयुग में जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाले, जो सतयुग में जाने वाले हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है कि हमें स्वर्ग बनाना है। क्या लक्ष्य होता है? सतयुग वाले जाने वालों का लक्ष्य होता है कि हमें स्वर्ग बनाना है। और त्रेता युग वालों का क्या लक्ष्य है? हमें स्वर्ग में आना है। द्वापर युग वालों का क्या लक्ष्य होता है? कोशिश करेंगे भाई, ट्राई कर रहे हैं, फुर्सत कम मिलती है, ये कुछ काम हो जाए तो ये हो जाए, ऐसा करने वाले द्वापर युग में आते हैं। और कलयुग वाले क्या कहते हैं? भैया तुमको स्वर्ग में जाना हो तो जाओ, मुझे परेशान नहीं करो। है? ठीक है, ये चारों युगों की रचना यहां ही हो रही है। इसलिए आपको स्वर्ग बनाना है, और स्वर्ग में आने के लिए, लाने के लिए, बनाने के लिए राजा बनना है, और राजा बनने के लिए अभी से यहां से देना है, शक्तिशाली बनना है, समर्थ बनना है। जब तक हमारे याद का चार्ट 8 घंटे से कम का है, तब तक समझो मैं रोज कमा रहा हूं, रोज खा रहा हूं ये मेरे लिए ही इतना है। 8 घंटे से अधिक का चार्ट बनेगा तब आप किसी को देने की स्थिति में होंगे। और आपकी याद की यात्रा इसलिए भी बहुत जरूरी है कि समय रहते हम अपने चार्ट को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं ताकि हम आने वाले समय में जो भिखारी आत्माएं हैं उनको दे सकें, जो अशांत आत्माएं जो भटक रही हैं वातावरण में उनको दे सकें, जो जिंदा ही भटकती रहेंगी उनको भी दे सकें, नए सतयुगी सतो प्रधान गर्भ महल तैयार करना है उनको भी वाइब्रेशन दे सकें, इस कलयुगी दुनिया का सफाई करा सकें, विनाश के बाद प्रकृति को भी पावन बना सकें, नई दुनिया में सतो प्रधान प्रकृति की रचना करें, महल बनाए, उन सब के लिए आपको याद का शक्तिशाली चार्ट बनाना है। तो अमृत वेला उसके लिए उठना है, इसलिए नहीं उठना है कि बाबा ने कहा उठकर के योग लगाना है, इसलिए कि लोगों के गले कट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और कहते हैं मेरे इष्ट भगवान बचाओ, बाबा तो नहीं जाएगा, बिंदु तो नहीं जाएगा, बिंदु कैसे बचाएगा। आप में से जो अशरीरी बनकर के बैठते हैं बाबा उनमें प्रवेश करके या उनको लेकर के साक्षात्कार कराता है और लोगों की जान बचाता है, उनके प्राण बचाता है, इसलिए भी आपको उठ करके अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जो प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुखी आत्माएं हैं उनके लिए भी उठना है। अब ये नहीं गाना है कि ये संगम का युग ना बीते, रहे सदा तेरा अमृत पीते बाबा, ऐसे अमृत पीते रहे, बल्कि अब चलने की तैयारी भी करनी है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये ना हो कि बच्चे रो रहे हैं और मां बाप जो यहां बैठे हैं वो सो रहे हैं, तो सोए ना नहीं, अब जागना है, आंखें खोलो, स्मृति माना जागरण, स्मृति माना अवेयरनेस, स्मृति स्वरूप बनना माना कॉन्स्टेंट अवेयरनेस। सोने का समय नहीं, जब याद में बैठे तो ऐसे बैठे जैसे मैं बैठा हूं, कब से बैठा हूं, देखो ये आसन, जिस आसन बाबा बैठते हैं, ये आसन एक ऐसा आसन है अर्ध पद्मासन जिसमें आप घंटों तक बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा सीधा। जिनको भी नींद आती है वो इस आसन बैठे, ऐसे बैठे, सुखासन है, सहज आसन है, इस आसन बैठे, इस आसन बैठ के आप सीधी अपनी रीढ़ रज्जू रखें ऐसे, और सामने बाबा को प्रारंभ में कुछ मिनट तक लगातार अपलग निर्निमेष दृष्टि से देखें, आप देखेंगे कि आप में इतनी शक्ति आ जाएगी घंटों तक भी आपको नींद नहीं आएगी। ओके, ये अभ्यास करें और देखते हैं कल आप यहां बैठेंगे इसका अभ्यास करें। सुन तो लेते हैं हम लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाते, प्रैक्टिकल में ला के देखें तब स्मृति से स्मृति स्वरूप बनेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो कहने में आता है कि हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन निद्रा पर जीत पाई, आलस पर जीत पाया, अपनी जीभ पर कंट्रोल आया, अपने संकल्पों पर कंट्रोल आया, ज्ञान बल जमा हुआ, योग बल जमा हुआ, सेवा का पुण्य का बल मिला, क्या मिला, क्या किया, किस पर विजय प्राप्त किया, अभी तक इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं तो उसकी सिद्धि मिलनी चाहिए। कम से कम जब हम दिन की दिनचर्या में सुबह 1 घंटा बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, तब तो भाई ठीक से बैठे। नींद करने को योग नहीं कहा जाता, नहीं तो बाहर वाले देखेंगे इनका राजयोग माना झुटका योग, ये राजयोग नहीं है। राजयोग माना जो हमको देखे तो उसका योग लग जाए, करंट आना चाहिए। ऐसे अमृत वेला शक्तिशाली बनाए और आप शक्तिशाली बन जाएंगे। अभिनंदन करें, इसके लिए आप तैयार हुए। नेक्स्ट है चौथी बात, मुरली को पूरा अध्ययन करें, जैसे समय मिले दिन भर में 5 बार 10 बार 25 बार जितनी बार हो बार बार पढ़ें। यही ओढ़ना हो जाए, यही बिछोना हो जाए, यही खाना और यही पीना, जब तक आप मुरली में पूरा रमेंगे नहीं व्यर्थ से बच नहीं सकते। समर्थ बनने का एक ही उपाय है, बस बाबा और बाबा की मुरली। तुम मुरली को प्यार करो, मुरलीधर तुमको प्यार करेगा, पक्का बना ले। पांचवी बात, कर्मयोग करें, ऐसे हाथ करें, ऐसे फील करें कि शिव बाबा मेरे ऊपर हैं, बाबा यहीं पर हैं। इस स्मृति को शक्तिशाली बनाएं, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। और इसके साथ ये अभ्यास दिन भर में 50 बार लगातार, गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल हो जाए कि मेरे ऊपर मेरे बाबा है। और जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, एक ही अभ्यास करें, इस अभ्यास को पक्का जब कर लेंगे, अंत में जब हमारा ऊपर से बुलावा आएगा, बाबा बुलाएगा, तो भी याद रहे कि तो चलने की बेला आ गई, तब ये नहीं बाबा बचाओ ये भी ना हो, स्मृति स्वरूप रहेंगे कि बाबा मेरे ऊपर मेरे साथ, उनकी किरणें, अब वो किरणें जो है मुझे बुला रही हैं, किरणें मुझे लेकर के जा रही हैं बाबा। और अंत मते सा गते हो जाएंगे। तो ये अभ्यास एक साधय सब सदय, एक अभ्यास करें जो आपको अंत तक काम में आएगा। ऐसे ही कर्मयोगी बनने के लिए एक अभ्यास कर लें पांचों स्वरूपों का मेरे साथ, सब कोई करें और दोहराएं, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। करें तो याद रहेगा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। बहुत अच्छा, बधाइयां ढेर सारी। और इसके साथ हर रोज एक घंटा समय निकाल करके एकांत में बैठना और अपनी दिनचर्या को चेक करना, आज मैंने किस लक्ष्य से अपनी दिनचर्या का आरंभ किया था, कितना मैंने लक्ष्य को ग्रहण किया, उसका निरीक्षण करें, परीक्षण करें। अपने लिए हर दिन की दिनचर्या को सवेरे ही नोट कर लें, मुझे आज क्या करना है, और रात को सोने से पहले अंतिम बात इसका धन्यवाद करें, थैंक यू मेरे शरीर, मेरे दोस्त, अंतिम जन्म के साथी, सबसे मूल्यवान है खटारा गाड़ी नहीं नहीं, बड़े काम के हो, बहुत अच्छे, बहुत अनमोल रतन, बहुत अच्छे हो, धन्यवाद करें अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे करके धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका धन्यवाद जिन्होंने आज का दिन दिखाया, और दोनों हाथ ऊपर करके प्यारे बाबा को थैंक, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू।